एक बार कुछ पत्रकार के समूह ने भगवान से उनके कार्य प्रणाली के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा, सामान्यतः जिस तरह का भौतिक या धार्मिक दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली दूसरे संस्थानों का होता है, वैसा मेरा नहीं है। मेरा कार्य प्रणाली बड़ा सीधा और सरल है, जो प्रेम के माध्यम से मनुष्य के रूपांतरण पर आधारित है। मेरे संस्थान का ढांचा है वसुदैव कुटुंबकम, जो भाईचारा और परस्पर सहयोगिता पर निर्भर है, जिसे मैं प्रेम द्वारा हासिल करता हूं। भगवान का हर शब्द, हर एक मुद्रा, उनकी मधुर मुस्कान, उनका दिव्य स्पर्श, सब उनके सर्वोत्कृष्ट निर्मल प्रेम की अभिव्यक्ति है। अब हम प्रेम अवतार श्री सत्य साई इस विषय पर सत्संग करेंगे।
साई राम। सभी श्रोताओं का रेडियो साई की इस प्रस्तुति प्रेमावतार श्री सत्य साई में स्वागत है। इस सत्संग में आज हमारे साथ हैं श्री श्रीनिवास राव और श्री सर्वज्योति अरोरा। श्रीनिवास राव भैया भगवान के अस्पताल श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंस में लगभग 25 साल से सेवा कर रहे हैं, और सर्वज्योति अरोरा भगवान के साथ दीर्घकाल से जुड़े हुए हैं और भगवान के अनेकों दिव्य अनुभव इन्हें प्राप्त हुए हैं। इन्होंने भगवान के समक्ष उनकी अनेकों दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष रूप में रसपान किया है। आइए हम सब भी इस आनंदमयी प्रेम धारा में डुबकी लगाएं। मुझे इस समय वो भजन याद आ रहा है जिसमें हम भगवान को प्रेम स्वरूप मानकर उनकी आराधना करते हैं। आइए शुरुआत में इसकी दो पंक्तियां सुनते हैं।
प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। सब धर्मों में साई समा है, ईश्वर प्रेम प्रेम है।
इस भजन को सुनने के बाद मुझे एक घटना याद आ गई कि जब भगवान ने व्हाइटफील्ड में भी एक निशुल्क सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया और उसे मानव सेवा में समर्पित किया, तब कुछ भक्तों ने जो सीधे सीधे उस हॉस्पिटल के निर्माण और प्रशासन से जुड़े हुए थे, भगवान के समक्ष ये पेशकश की कि यदि वे मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेते समय, चिकित्सा पूर्ण होने के बाद छुट्टी लेते समय उन पर हुए खर्च का एक द्यौरा, समझ लीजिए एक बिल के समान का कागज दें, तो इससे उन मरीजों को भी ये जानकारी मिलेगी कि यहाँ उनकी चिकित्सा पर कितना खर्च किया गया है और उनके हृदय में भगवान के प्रति, हॉस्पिटल के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होगा। इस पर भगवान के उत्तर ने उन्हें निशब्द कर दिया। भगवान बोले, जब तुम अपने घर पर किसी को खाने पर बुलाते हो तो क्या उनके भोजन खा लेने के उपरांत उन्हें भी कोई बिल या सूची देते हो? मेरे पास केवल प्रेम का आदान प्रदान होता है। इस अस्पताल में जो भी मरीज आ रहा है वो तो मेरा अपना है।
सही है।
तो अपनों के साथ हम कैसे कह सकते हैं कि हमने कुछ किया है? ये तो हमारा फर्ज है, ये तो प्रेम का धर्म है। मुझे याद है जब ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पुट्टपर्ती की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तब एक इंजीनियर महाशय जो पूरा इंचार्ज थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी, हमको हॉस्पिटल के अंदर संगमरमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल टाइल्स लगाएंगे तो खर्चा भी कम हो जाएगा। तो स्वामी ने कहा कि मुझे संगमरमर ही चाहिए। तो फिर इस डिवोटी ने स्वामी से कहने की कोशिश की, स्वामी इधर जो लोग आएंगे वो तो गरीब लोग ही आएंगे,
क्योंकि ये तो निशुल्क हॉस्पिटल है, तो टाइल्स ठीक है। तो स्वामी ने कहा इसी कारण मुझे संगमरमर डालना है, क्योंकि जब वो गरीब लोग आएंगे उनको लगना है, उसको ये लगना चाहिए कि मैं एक सुंदर महल, ऐसी महल जो कभी भी मैंने जीवन में कदम रखने का सोचा भी नहीं, ऐसे महल में मुझे आज आने की ये सौभाग्य मिला है, उनको ऐसी लगनी चाहिए।
ना सिर्फ सौभाग्य, मेरे हिसाब से भगवान उनको ये बताना चाहते हैं कि तुम भी इसका हिस्सा हो, ये तुम्हारे लिए ही है, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। वो ये उनके मन में ये है कि देखिए भगवान ने हमारे लिए, हमें इस घर के अंदर आने का मौका दिया, इस महल के अंदर आने का मौका दिया, जो कहीं भी नहीं मिल सकता, वो केवल भगवान ने उनके लिए बनाया।
बड़े बड़े अस्पतालों में तो हम कदम भी नहीं रख सकते हैं, जो छोटे परिवार के लोग होते हैं, गरीब होते हैं, सोच भी नहीं सकते कि उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं।
जब हम भगवान के प्यार के बारे में बताते हैं, भगवान के प्रेम के बारे में बताते हैं, तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो भगवान के हर शब्द, हर मुद्रा, सब में ये प्रेम ही प्रेम के दृष्टांत निकलते हैं।
और भगवान ने भी खुद कहा एक बार कि यदि मुझे एक नाम देना चाहते हो तो वो रखो प्रेम। तो उस तरह से देखा जाए तो आपने जो गाना सुनाया वो एकदम सही आज के सब्जेक्ट के लिए, प्रेम ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है।
आपके जीवन में आपने भगवान के ऐसे कौन से अनुभव प्राप्त किए हैं जो जब भी आप इस भजन को गाते हो वो मन में उभर आता है?
वैसे तो जब से हमने स्वामी को जाना है तब से तो सिर्फ एक प्रेम की धारा ही रही है। जब मैंने पहली बार भगवान से मिला था, मैं तो 15 वर्ष का था, तो मैंने भगवान से बोला कि मैं आपके कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ। तो भगवान ने बताया ये मेरा कॉलेज नहीं है, ये अपना है।
ओह
एक छोटे से बच्चे को भगवान ने, उस समय भगवान का उम्र यदि उम्र से नापा जा सकता है तो उनका उम्र 54 साल का था, 54 या 53, उस समय एक 15 साल के बच्चे को बता रहे हैं कि ये कॉलेज मेरा नहीं है, सिर्फ मेरा नहीं है, ये अपना है।
कैसे तो, उन्होंने एक ही पल में आपको अपना लिया,
अपना लिया,
और आपने भी शायद उसी पल में सब कुछ अपना लिया
एकदम। आज तक तो हमें लगता है कि ये भगवान हमारे हैं, यहाँ का जो कुछ है वो सब कुछ हमारा ही है। और न केवल मेरे को ही, ना केवल इधर के विद्यार्थियों को, सभी भक्तों को आप देख लो कि उनका अनुभव रहेगा कि प्रशांति निलयम हमारा है, भगवान हमारे हैं।
सबको लगता है कि प्रशांति निलयम उनका घर है।
बिल्कुल।
एक और मुझे घटना याद आ रही है, जब प्रेम प्यार के बारे में हम जिक्र करते हैं तो साधारणतः हम लोग तो सिर्फ एक दैनिक जीवन में जो प्यार का अनुभव करते हैं, मनुष्यों का आपस में प्यार, भाईचारा, ये जो भगवान जो हमें प्रेम के बारे में सिखाते हैं वो सिर्फ न केवल मनुष्यों के बीच में प्यार है लेकिन ये जीव जंतुओं के ऊपर भी दिखाना होता है। एक बार भगवान इंटरव्यू रूम में बैठे हुए थे, एक चिट्ठी पढ़ रहे थे, तो कस्तूरी जी ने ये खुद स्वयं उन्होंने बताया ये बात। तो कस्तूरी जी भगवान के चरणों पर बैठे, उनकी चरण स्पर्श कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि स्वामी के हाथ पे एक मच्छर बैठा हुआ है। जैसे स्वामी एक पत्र पढ़ रहे थे तो कस्तूरी जी ने थोड़ा सा मतलब उनसे फ्रीडम लिया और स्वामी के हाथ पे मारा, वो मच्छर को मारने की इरादे से। तो स्वामी पलट के देखे, पूछे कस्तूरी तुम उसको क्यों मारे हो, क्या वो तुम्हारा खून पी रहा है, क्या मेरा खून पी रहा है ना। तो देखिए आप भगवान का जो प्यार होता है वो सिर्फ ना मानवों के लिए नहीं, सारी जीव जंतुओं के ऊपर भी है।
ये तो मैंने खुद एक बार देखा था कि भगवान वृंदावन में जब दर्शन देने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने अपनी एड़ी से ऊपर अपनी जो उनका चोला था उसको थोड़ा ऊपर उठा लिया और थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े होकर के चल रहे थे। तो हमको भी बड़ा अजीब सा लगा कि भगवान आज बड़े ध्यान से चल रहे हैं, कैसे नीचे देखते हुए चलते आ रहे थे। तो थोड़ी देर बाद पता लगा कि वहां से एक चींटियों की पंक्ति जा रही थी और भगवान उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहते थे अपने चलने से। तो भगवान का प्रेम शब्द भी शायद भगवान से ही अपनी एक परिभाषा लेता है। हर जीव, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी स्थान से आया हो, वो जब पहली बार भगवान से उसका साक्षात्कार होता था दर्शन में ही, चाहे वो ना भी बात करें, उसको लगता था ये मेरे अपने हैं, यही बस मेरे अपने हैं।
इस विषय पर भगवान ने खुद बताया है एक बार कि मैं जब चलता हूँ जमीन पर इतना संभल के चलता हूँ कि कहीं मैं किसी चींटी पर पाँव ना डाल दूँ। तो भगवान ने खुद ये प्रवचन में बताया था एक बार।
मुझे याद है भगवान कहते थे कि आप तो एक माँ का प्यार समझ नहीं सकते, आप कैसे हजारों माँओं का प्यार समझ सकते हो।
तो एक बार मैं मुझे घर पे किसी विषय पे मैं अपनी मदर की बात मान नहीं रहा था, तो भगवान ने मेरे पिताजी से बात करते हुए बताया कि वो एक माँ के प्यार को नहीं समझ रहा है तो मेरे हजार माँओं के प्यार को कैसे समझेगा। तो इस तरह से भगवान हमको हमेशा करेक्ट करते थे।
लोगों का एक प्रश्न मन में आता है कि आपने तो अनुभव किया है भगवान का प्यार, लेकिन मैंने तो कुछ अनुभव किया ही नहीं। भगवान का प्यार अनुभव करते कैसे हैं, और भगवान का प्यार अगर हमारे जिंदगी में आ गई तो क्या लाभ होगा।
तो इसके बारे में भी एक बार स्वामी अपने दिव्य प्रवचन में वृंदावन में बोल रहे थे कि कोई भी आपसे पूछ सकता है, आप भगवान की आराधना करते हो, पूजा करते हो इतने सालों से, आपने क्या पाया है। तो भगवान ने खुद बताया, उनको ये बताओ कि भगवान का जो प्यार होता है, वो दिव्य प्रेम, वो यदि अपने हथेली के अंगुली के आधे नाखून के बराबर भी यदि आप प्राप्त कर लेते हो अपनी भक्ति से, ये आधे नाखून के बराबर की प्यार प्रेम, भगवान की दिव्य प्रेम जो होता है, वो आपका सब कुछ कर डालता है,
सब काम अपने आप
होने लगता है। आप देखो, जो भगवान पे ही हमेशा सब चीज़ के लिए निर्भर होते हैं, उनका सब कुछ बहुत ही मतलब आसानी से चलता है जीवन। जो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है, और जब जिसके पास नौकर चाकर हैं, उसके लिए भी बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, लेकिन एक जो भगवान के ऊपर निर्भर रखा है जीवन, उसका सब कुछ बहुत ही आसानी से चल रहा है। तो ये यही दिखाता है अपने को कि भगवान का प्यार जो है उनके जीवन को पूरा संभल रखा है।
इस पे मुझे एक अपने जीवन से एक उदाहरण याद आ गया कि आपने कहा ना कि किस प्रकार अगर आप भगवान पे निर्भर हो जाते हो, उनको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है
एकदम।
मेरी जो दादी, वो अस्पताल में उनको दाखिल कराया था, तो उनका कलाई का ऑपरेशन था, तो डॉक्टर बड़े टाइम से सफर कर रही थी। डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि पार्शियल पैरालिसिस हो जाए। तो मैं घबरा गया, और भगवान उस समय वृंदावन में थे, तो मैं वहाँ आया और मैं बैठ गया दर्शन में। सुध-बुध खो गया था कि अभी क्या करना है, उनको अस्पताल में कराया हुआ है, कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी चिकित्सा उनके लिए लाभदायक नहीं थी। मैं बैठा तो मुझे ध्यान आया, अरे मैंने तो भगवान को कोई पत्र लिखा ही नहीं, क्योंकि हम सब भक्त ज़्यादातर अपने जो भी परेशानी या जो भी हम भगवान से कहना चाहते थे, वो एक पत्र में लिख करके बैठ जाते थे। भगवान ने ले लिया तो हमसे ज़्यादा खुशहाल इस संसार में कोई नहीं होगा। तो मैं बैठा, मेरे को ध्यान आया कि अरे वहाँ तो सिक्योरिटी भी खड़ी हो गई, और भगवान तो बाहर आने वाले हैं, और मैं तो बिना पत्र के बैठा हूँ, अब क्या करूँ। कोई बात नहीं, अब कुछ कर नहीं सकता था, बैठा था। भगवान आए, और वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, वो महिलाओं की तरफ देख रहे थे, और उनकी पीठ मेरी तरफ थी। तो मैंने सिर्फ मन में बोला, मैंने कहा भगवान आपने मुझे यहाँ बुलाया है, आप जानते हैं मैं क्यों आया हूँ, अब आप ही उन्हें ठीक कीजिए, ऑपरेशन के जरिए, अपनी विभूति के जरिए, या संकल्प से ही करिए, वो आप पे है। जैसे ही मैं बोला, और फिर मैंने ये भी बोला कि मैं तो चिट्ठी भी नहीं लिखी आपको,
सच
मेरे मन में ये मैंने जैसे ही बोला, भगवान एकदम पलटे, अपना अभ्यास दे के कहते, हे हम अच्छा करता है,
हम अच्छा करता है।
और जो मेरी दादी पिछले 6 महीने से सोई नहीं थी रात को, वो अस्पताल में थी, अगले दिन उनको अच्छा महसूस होने लग गया, और आप मानेंगे नहीं, उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई दवाई जो काम करती नहीं थी वो भी नहीं, दवाई भी नहीं दी। उसके बाद 7 वर्ष तक वो जीवित रही बिना दर्द के। कि हमें भगवान को किसी औपचारिकताओं में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है भगवान के साथ।
भगवान खुद बोलते थे कि तुम चिट्ठी लिखने से पहले ही मैं जानता हूं तुम क्या लिखने वाले हो,
क्योंकि वो जब हम उनसे अपना हृदय जोड़ लेते हैं बस, तो वो उसी समय वहां प्रकट होते हैं
एकदम। और भगवान ने ये उदाहरण भी दिया कि समझ लो एक रात को आप अकेले थे घर पे, और आधी रात में आपकी मतलब दिल पे दौरा पड़ने का महसूस हुआ, छाती पे दर्द हुई, तो आपने उठ के बत्तियां जलाई, तो लेकिन सहायता के लिए कोई नहीं था। लेकिन उसी समय ऐसा होता है कि आपके बगल वाला आपके घर पे लाइट्स ऑन देखकर अंदर आता है और पूछता है क्या हुआ है, तो पता चलता है उनको कि आप चेस्ट पेन हो रही है, तो इमीडिएटली वो एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करते हैं। तो एम्बुलेंस के आते ही साथ वो एक अस्पताल लेके जाते हैं आपको। अस्पताल ले जाने के बाद उधर डॉक्टर आपकी इमीडिएटली अटेंड करते हैं, फिर रात को पूरा स्टेबलाइज करके और सुबह तक आप ठीक हो गए हो और घर वापस आ गए हो नाश्ता करके। तो स्वामी ने ही ये उदाहरण देते हुए बताया कि देखो, भगवान का प्यार यदि तुम प्राप्त कर सकते हो इस तरह से, तो यही सब कुछ कराता है। ये जो कुछ भी हुआ भगवान ने ही कराया है। उस आधी रात में आपके बगल वाले का उस समय उठना और उस समय एक एम्बुलेंस
आपको मिलना
मिलने के बाद एक अगल बगल में अच्छी हॉस्पिटल होना, अस्पताल होने के बाद एक चेस्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट होना और आपका ठीक होना। यदि ये भगवान का प्यार आपके बगल में नहीं है, आपके साथ नहीं है, आपने यदि ये प्राप्त नहीं किया है अपने अच्छे कर्मों के साथ, अपने भक्ति प्रार्थनाओं के साथ, तो हो सकता है कि आप जब लाइट डाले हो तो कोई बगल वाला उठा नहीं, बगल वाला उठ भी गया तो एम्बुलेंस मिला नहीं, एम्बुलेंस मिल भी गया तो एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं, अस्पताल में चले भी गए तो एक डॉक्टर अवेलेबल नहीं और आपकी समस्या का हल नहीं। तो इस तरह से जो भगवान के प्यार को जब आप प्राप्त करते हो भक्ति से, प्रार्थनाओं से, अच्छे कर्मों से, तो ये जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है इस प्रेम का, जो भगवान की प्रेम की हम गुणगान करते हैं, भगवान ही प्यार है, भगवान ही हमारा सब कुछ है, तो इसका निदर्शन यही है कि मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका पूरा यूटिलिटी है।
आपको सुनकर के मेरे मन में विश्वास पक्का हो गया कि भगवान का प्रेम मेरे साथ तो है ही
एकदम,
क्योंकि
भगवान के प्रेम के अलावा कुछ और है क्या।
एक समय मैं बैंगलोर से पुट्टपर्ती आ रहा था और आधे रास्ते कुछ, मैं उस समय मेरी कुछ न्यूराइटिस की प्रॉब्लम है तो मेरा इलाज चल रहा था। रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मुझे थोड़ा सा मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ। चलिए मैं पुट्टपर्ती तक आ गया। पुट्टपर्ती आने के बाद भी मैं किसी से मिलने गया उनके कमरे में, जो मैंने नहीं जाना था, पर मैं पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं पहुंचते ही पहले उनसे मिलने चला गया। वहां गया तो मेरा दर्द बढ़ गया। अब क्योंकि मैं वहां पर, वो मेरे साथ थे तो वो मुझे एकदम से अस्पताल ले गए, और जैसे ही मैं अस्पताल में पहुंचा मैं बेहोश हो गया। मेरा बीपी एकदम 80-60 पहुंच गया और मेरे को बहुत तकलीफ बढ़ गई।
उस समय तक ठीक था
जब तक अस्पताल नहीं पहुंचा। जैसे ही अस्पताल के अंदर पहुंच गया तो ये इतनी परेशानी बढ़ गई। तो ये अगर मेरे साथ बैंगलोर होता या आधे रास्ते में होता
रास्ते में होता
तो मेरा
भगवान ने रोक के रखा वैसे।
तो और फिर मैं अगर अपने कमरे में भी अकेला होता तब भी शायद मैं उस समय किसको बुलाता या पता नहीं क्या होता मेरा। मेरे मन में भगवान ने ये जागृत किया, मैं किसी के पास पहुंच गया उसी समय, जो कभी होता नहीं कि आने के बाद तो हर कोई अपने घर जाके बैठता है। परंतु इसी प्रकार भगवान हर एक, हमें उनको, कोई अगर ये सोचता है कि भगवान हमसे दूर हैं तो शायद उसको फिर दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि भगवान ही हैं
हमारे पास
और
निरंतर।
ये भगवान के प्यार को हम कैसे पा सकते हैं?
अच्छे कर्म,
अच्छे कर्मों से। जैसे अब देखे हो, स्वामी ने इतना अपॉर्चुनिटीज दिया हुआ है सेवा के रूप में, हमें अपने को समर्पित करने के लिए। इस सेवा के माध्यम से हम ये प्राप्त करते हैं।
इस नई वर्ष में अगर हमको कुछ नई चीज हमारे जीवन में अपनाना है तो मुझे लगता है यही हमारे भगवान के प्रति समर्पण हो सकती है।
सच में
कि हम सोचें कि हम अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म मतलब निस्वार्थ कर्म करें।
इससे बेहतर कोई सुझाव है ही नहीं इस नए साल के संदर्भ में।
क्योंकि इस संदर्भ में भी मुझे एक बात याद आई कि हमारे कुछ जो यहाँ छात्र बंधु हैं, उन्होंने बाहर से अमेरिका और अलग अलग देशों से आकर के उन्होंने अपनी गांव में जाके सेवा दी, और सेवा के बाद वो दर्शन में बैठे कि ये सोचकर भगवान तो हमसे आज बड़े प्रसन्न होंगे, हम अपना काम छोड़ के इतनी दूर से आकर के यात्रा करके यहाँ आए, तकलीफ में रहे गाँव में जा कर के और सबकी सेवा करी, तो हमको तो भगवान आते ही पाद नमस्कार देंगे, इंटरव्यू में बुलाएंगे और बहुत प्यार देंगे। भगवान आए अपना दर्शन देने के लिए और उनकी तरफ देखा भी नहीं और चले गए। तो वो सोच में पड़ गए, अरे हमने क्या गलती कर दी, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, तूने कुछ गलत किया होगा या तूने कुछ गलत किया होगा, ये सोच ही रहे थे। भगवान वापस आए, उनको आकर के बोले, जब तुम सुबह अपने दांतों को मांजते हो, ब्रश करते हो, तो क्या मेरे से आके पाद नमस्कार मांगते हो? सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए, किसी की प्रशंसा नहीं, इवन भगवान से भी कोई प्रसाद पाने के लिए नहीं,
नहीं करना चाहिए।
वो तुम्हारा स्वरूप है, जिस प्रकार तुम एक छोटे छोटे कर्म अपने दिनचर्या के करते हो, वो क्या तुम उसके लिए क्या किसी से कोई प्रशंसा मांगते हो, या मेरी फोटो के सामने या मेरे सामने आकर के कहते हो कि भगवान हमने आज ये किया? जब आप निस्वार्थ भाव से कोई भी कर्म करेंगे तो हमको भगवान तक कहने की भी जरूरत नहीं
है, नहीं है।
वो अपने आप ही पहुंच जाते हैं और हमको हर तरीके से प्रसन्न कर देंगे
और हमारी हर तरीके से रक्षा करती है,
रक्षा करते हैं पूर्ण रूप से हमें। हम भगवान कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे ऊपर हूं, तुम्हारे पीछे हूं, तुम्हारे आगे हूं।
ये प्रेम जो है ना, ये रक्षा की बात आपने जिक्र किया, एकदम सही है। ये
प्रेम ही हमारा धर्म है, प्रेम ही हमारा कर्म है, प्रेम के लिए ही हमारा जीवन हमको भगवान ने प्रदान किया है,
और प्रेम ही हमारा भगवान है,
प्रेम ही हमारा भगवान है। लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें इस कार्यक्रम को अभी न चाहते हुए भी रोकना पड़ेगा, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे इस हिंदी कार्यक्रम तो अभी शुरू हुआ है, आगे बहुत सारे एपिसोड्स बनाएंगे हम इस साई प्रेम वाणी में। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि इस नए वर्ष में हमारे दिल में उनके लिए प्यार और बढ़े, और हमारा कर्म सब सत्कर्म बने,
निस्वार्थ सत्कर्म,
निस्वार्थ सत्कर्म। बहुत बहुत धन्यवाद,
धन्यवाद। साई राम,
साई राम, साई राम।
आप सुन रहे थे श्री श्रीनिवास राव, श्री सर्वज्योति अरोरा और रेडियो साई के श्री विशु पृष्टि के बीच हुआ प्रेम अवतार श्री सत्य साई पर एक सत्संग।